प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मई की जय। श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज के इस शाम के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र के पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक गुरु भाई हैं, हमारे परम प्रिय मित्र हैं, उनका नाम है भूरीदा कृष्ण प्रभु और वो भीलवाड़ा में रहते हैं और बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बहुत सालों से महाराज जी के शिष्य हैं। वो अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में अभी कुछ घंटों के लिए हमारे पृथ्वी पर रहेंगे, शायद ठाकुर जी की इच्छा रही तो ठाकुर जी उनको अपने पास बुलाएंगे। तो आज के सत्र के आरंभ में ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की शाम की कथा जो है वो उनके दिव्य उन्नति के लिए समर्पित है। हमारे प्रार्थना के रूप में वो कथा उनको समर्पित की जाएगी, क्योंकि हरि कथा श्रवण करने से भगवान के सानिध्य को प्राप्ति होती है। इसलिए हम आज की शाम की ब्रज के प्रवेश की कथा, ब्रज की रज की महिमा, यमुना महारानी की महिमा और ब्रज में प्रवेश, ये कथाएं उनके लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहे हैं। आपको भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु भाई के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। उनको ठाकुर जी का सान्निध्य प्राप्त हो, ठाकुर जी के चरणों की चरणों का आश्रय प्राप्त हो, ब्रज रज प्राप्त हो, यही हमारी राधा रानी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना है। तो मेरा ऐसा विचार है कि जैसे ही मैं वो महात्म्य की समाप्ति करूंगा तो मैं कुछ प्रश्न लूंगा आपसे, अगर किसी को प्रश्न है तो उसके उत्तर दूंगा। हमारी कथा कौन से मोड़ पर रुकी थी वहां पर मैं भी आपको ले जाता हूं। वृक्षों का महात्म्य हमने बताया था, उसके बाद हम गाय के महात्म्य को बता चुके हैं और उसके बाद में मोर का महात्म्य बताया, बंदरों का भी बता दिया और फिर अभी हम श्री यमुना के सानिध्य में जाने का प्रयास करेंगे। श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना देवी और श्री गिरिराज जी महाराज, ये तीनों अविभाज्य अंग हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व ही अपरिपूर्ण है। तो यमुना देवी का निर्माण कैसे हुआ? यमुना देवी तो ब्रज का अलंकार है और विशेष और सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अगर वृंदावन आँख है, नेत्र है, तो यमुना जी को काजल कहा गया है। काजल कैसे लगाते हम? श्री राधे मेरी स्वामिनी, रखियो तेर रखियो सदैव तेरी टेक, नैनन में राखो जैसे जो काजल की रेख। नैन में काजल कैसे लगता है? उसके बॉर्डर में लगता है, एक लकीर लगती है, हाँ रेख बोलते हैं उसको, एक रेख वो आंखों को चारों तरफ से घेर लेती है। आंखों को आवृत्त कर लेती है। उसी प्रकार से यमुना जी श्री वृंदावन को पूरी तरह से एक 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 तरफ से आती है और दूसरी तरफ से पूरा घूमकर जैसे मानो वृंदावन की वो परिक्रमा कर रही है, ऐसे यमुना देवी का विशेष अस्तित्व है। आज के तारीख में भी जो छोटा सा वृंदावन हम देख रहे हैं भौगोलिक रूप से, उसमें भी वही स्थिति है। जैसे हम परिक्रमा करते जाते हैं, हमारे बाजू में से यमुना जी परिक्रमा करते करते ही मुड़ जाती है और फिर वहाँ से आगे चले जाती है। 20 कोस का जो वृंदावन है उसकी भी यही कथा है। जब पौराणिक वृंदावन था उस समय भी यमुना जी गोवर्धन के पास बहा करती थी, नंदगांव के पास बहा करती थी। आज अभी कालांतर में कलयुग में उसका मोड़ जो है बदल गया है, अलग अलग रास्ते से जाती है। पहले वृंदावन की परिक्रमा जब हम आज चलते हैं उस रास्ते पर यमुना जी चलती थी, जिसका दर्शन भी हमने किया है 35 साल पहले। तो ये यमुना वृंदावन की परिक्रमा की एक अद्भुत बात है। जब जब चलते हैं तो इमली तला से लेकर वो कालिया घाट से दर्शन शुरू होता है और जो घाट जैसी स्थितियां बनी हुई है वो इसका प्रमाण है कि यमुना जी वहाँ बहा करती थी। क्योंकि तो घाट कहाँ बनता है, सीढ़ियाँ कहाँ बनती है जहाँ पर जल होता है। तो कई सारे घाट हमारे हॉस्पिस से ही आरंभ होते हैं, वो कई सारे घाट, तो यमुना जी वहाँ बहती थी इसका ये प्रमाण है। और ये कम से कम 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले भी यमुना जी वहाँ बहा करती थी। अभी थोड़ी बहुत आगे चली गई है, जब बाढ़ आते तो दोबारा उस रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ से वो पीछे चली गई है। तो ये यमुना जी के बिना ब्रज का विचार करना भी नामुमकिन है। इसका इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई? इनका प्रकट्य जो है वो गौलोक वृंदावन धाम में है। गौलोक वृंदावन धाम में जब भगवान ने अपने बाएं अंग से राधा रानी का निर्माण किया, दाएं अंग से ग्वाल बालों का निर्माण किया, और राधा रानी ने फिर अपने अंग से गोपियों का निर्माण किया और गोपी वृंद तैयार हो गया, फिर सबसे पहले भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ में गौलोक में रास रचाया। ऐसे कहते जब राधा रानी का जन्म हुआ तो सबसे पहले राधा रानी जन्म होते ही भागी बगीचे में फूल बिनने के लिए। ये है भक्तों का सेवा का भाव, जन्म से ही सेवा में रत रहते हैं। तो इस प्रकार से जब राधा रानी ने अपने तरफ से गोपियों का निर्माण किया तो रास रचाया, तो रास रचाने में रास रचाते समय उनके दिव्य शरीर से दिव्य स्वेद का निर्माण हुआ। अभी हमारे शरीर में जल निकलता है उसको पसीना कहते हैं, उसको बदबू आती है, लेकिन जब दिव्य आध्यात्मिक सच्चिदानंद शरीर से जल निकलता है छिद्रों में से तो बड़ा दिव्य सुगंधित होता है, और कैसे विविधतापूर्ण सुगंध होता है उसका। अगर किसी एक व्यक्ति से शरीर से अगर सुगंध आ रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति से विविधतापूर्ण होगा, अलग होगा। ऐसे विविधतापूर्ण अनंत स्वेद जलों का निर्माण हुआ, उसका बहाव हुआ, कृष्ण के शरीर से हुआ, राधा रानी के शरीर से हुआ, गोपियों के शरीर से हुआ, और सारे शरीरों से ये जो बहाव हुआ दिव्य जल का, दिव्य स्वेद जल का, वो एक जगह एकत्रित हो गया और उसको एक जलाशय, एक तालाब, एक सरोवर का रूप प्राप्त हो गया। रास समाप्त हुआ, ये बहाव समाप्त हो गया, उसके पश्चात राधा रानी कृष्ण को लेकर वहां पर आई, गोपियों को लेकर दर्शन करने के लिए कि वो सुंदर सरोवर कहाँ है और कैसा है। तो उस सुंदर सरोवर को देखते ही उसका लुभावना सौंदर्य, उसको आकर्षक सौंदर्य देखकर राधा रानी बड़ी मोहित हो गई, बड़ी आनंदित प्रफुल्लित हो गई। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि क्यों न इस सुंदर आकर्षक तेजस्वी सरोवर को, जलाशय को हम नदी का रूप दें, क्यों न प्रवाहित करें इसे। तो तत्क्षण उनकी इच्छा के अनुसार वो जो जलाशय था वो प्रवाहित हो गया, और वो प्रवाहित जलाशय को ही हम यमुना जी कहते हैं। इस तरह से यमुना जी का जन्म हुआ और फिर वो गौलोक की शोभा हो गई। गौलोक को अपने अपने कमनीय प्रवाह से उन्होंने बहुत सुशोभित कर दिया। उसके प्रवाह से, उसके जल के प्रवाह से गौलोक सुंदर हो गया, और हर एक किनारा गौलोक में उनका लीला स्थली का स्थान बना, लीला का स्थान बना। उसके आगे आप जानते हैं कि जब ये रास रचाया, यमुना जी का निर्माण हुआ, उसके बाद में राधा रानी एक बार कृष्ण को मिली गौलोक वृंदावन में। उन्होंने कहा कि मुझे ना आपके साथ में अंतरंग लीला, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स, संपन्न करने के लिए जगह चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जहां पर मैं आपके साथ में अंतरंग लीला कर सकूं। उसी समय जब राधा रानी ये कह ही रही थी, उसी समय राधा रानी के कृष्ण भगवान के वक्षस्थल से एक नील तेज निकला और वो गौलोक की भूमि पर स्थापित हो गया, स्थिर हो गया और गोवर्धन पर्वत का निर्माण हो गया। इस तरह से राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने गोवर्धन का निर्माण गौलोक में किया। वो करोड़ों योजन, एक योजन 8 मील का होता है, करोड़ों योजन आकाश में वो विस्तारित हो गया। फिर कृष्ण ने उसको रोका क्योंकि इतनी भयंकर उसकी ऊंचाई हो गई, तो रोका गया उसको। सब रत्नों से, झरनों से, जड़ी बूटियों से, फल फूल से और तालाब से, हरियाली से, धन धान्य से, हर प्रकार के जीवनावश्यक वस्तु से ये गिरिराज जी संपन्न थे। और जमुना जी का जल स्फटिक के समान प्रकाशमान था, उसमें सुंदर सुंदर सौगंधिका कमल खिला करते थे, सुंदर सुंदर मंद मंद सुगंधित वायु बहा करती थी। ऐसा ये सुंदर स्थिति है। उसमें बीच में फिर जब ही पृथ्वी पर बड़ा आतंक हो गया तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी को लेकर, देवताओं को लेकर गौलोक वृंदावन चली गई। ये सब गर्ग संहिता का वर्णन है। क्षीरोदकशायी विष्णु उनकी प्रार्थना सुनकर उनको लेकर स्वयं गौलोक पहुंचे और तो भगवान ने पृथ्वी देवी को वादा किया कि हम आएंगे और आपके ऊपर लीला करेंगे और राक्षसों का अंत करेंगे, आपके दुखों का निवारण करेंगे। तो उस समय राधा रानी बेहोश हो गई। इस समय सबको आश्चर्य हुआ, भगवान ने विस्तार रूप में सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप कुरुवंश में जन्म लो, आप ब्रज में जन्म लो, आप यादव वंश में जन्म लो, आप वृष्णि वंश में जन्म लो, ऐसे अलग अलग वंशों में देवताओं को जन्म देने के लिए उन्होंने आग्रह किया और विस्तार में योजना बनाई कि कैसे मैं आऊँगा और क्या क्या करूँगा। और देखा तो राधा रानी बेहोश हो गई है, तो उनको फिर होश में लाया गया गोपियों के द्वारा। राधा रानी को प्रेम से भगवान ने पूछा, क्या हुआ, क्यों आपकी ऐसी दशा हो गई? तो राधा रानी ने कहा कि आपके आने वाले विरह को देखकर मैं व्याकुल हो गई कि आप जाने वाले हो। तो कृष्ण ने कहा कि आपको कैसे लगा कि मैं आपके बिना जाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। राधा रानी ने कहा, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। बोलो, क्यों, आप क्यों नहीं आओगी? क्योंकि यत्र गोवर्धन नास्ति, यत्र वृंदावन नास्ति, यत्र जमुना नास्ति, तत्र न मन न मनसुख, मेरे मन के लिए कोई सुख नहीं वहां पर, जहां पर यमुना जी नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वृंदावन धाम नहीं है। तो कृष्ण ने कहा, आपके मंतव्य को जानकर पहले से ही मैंने वृंदावन धाम का, गोलोक का 84 कोस का हिस्सा और यमुना जी और गोवर्धन को नीचे भेज दिया है। इसका मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार, उससे भी ज्यादा राधा रानी की इच्छा के अनुसार ये पृथ्वी पर अवतरित हुई है। अगर राधा रानी की ऐसी इच्छा नहीं होती कि वृंदावनम पादम न एकम न गच्छति, ऐसी इच्छा न होती तो फिर यमुना जी नहीं होती, गिरिराज गोवर्धन नहीं होते, वृंदावन धाम नहीं होता, कृष्ण भगवान ऐसे आ जाते। राधा रानी ने कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज पृथ्वी पर वृंदावन धाम है, एक विमान के रूप में है, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के ऊपर है। जैसे बलदेव प्रभु जी बता रहे थे दोपहर को कि पृथ्वी के ऊपर गौलोक वृंदावन है 84 कोस का, ये विमान के रूप में है। तो कभी कभी ये प्रश्न पड़ता है कि गौलोक वृंदावन पृथ्वी पर है कि पृथ्वी गौलोक वृंदावन पर है क्योंकि वर्णन ऐसा भी आता है कि पृथ्वी को वराहदेव लेके जा रहे थे तो पृथ्वी तो उनके दांतों के ऊपर थी और नीचे उनको हरियाली दिखाई पड़ी जिस पर वराहदेव रखने वाले थे, और फिर उनको वराहदेव को पूछती है कि मुझे आप कहाँ रखने वाले हो, ये हरियाली कहाँ की है ये? तो कहते रखने के बाद में बताता हूँ। और फिर जाकर उन्होंने पूरे वृंदावन का महिमा उनको सुनाया है, विश्राम घाट में विश्राम करते हुए आदि वाराह पुराण के रूप में। तो ये भी एक यक्ष प्रश्न ही है, इसका उत्तर मैं तो नहीं दे पाऊंगा कि वृंदावन पृथ्वी के ऊपर है कि पृथ्वी वृंदावन के ऊपर है ये एक दिव्य रहस्य की बात है, अचिंत भेदाभेद तत्व है। तो कैसे आई यमुना भगवान की इच्छा के अनुसार? ऐसे लिखा है गर्ग संहिता में, बहुत सुंदर वर्णन दिया है, 1,00,000 पहियों वाले रथ में बैठे हुए, करोड़ों सोने की घंटाएं जिसमें लगी हुई है, ऐसे रथ में इसके 1,00,000 पहिए हैं, 100,000 व्हील्स, उसमें अपनी करोड़ों सखियों को लेकर गौलोक धाम से यमुना जी अपनी यात्रा शुरू करती हैं। पूरे गोलोक धाम को क्रॉस करती है, फिर मथुरा, फिर अयोध्या, फिर द्वारका, फिर वैकुंठ, विरजा नदी को पार कर लेती है, फिर महत्तत्व की छाया में प्रवेश करती है, फिर जिस पृथ्वी तल पर जिस ब्रह्मांड में भगवान लीला करने वाले हैं उस ब्रह्मांड के छेद में प्रवेश करती है, जहां से वामन देव के अंगूठे का स्पर्श होकर गंगा जी का प्रवेश हुआ था। उसी छिद्र से यमुना जी प्रवेश करती है। पहले ब्रह्मा लोक जाती है, फिर ब्रह्मा लोक जाकर स्वर्ग लोकों में होते हुए फिर पृथ्वी पर प्रवेश करती है। ये उनका दिव्य अवतरण हुआ। लेकिन दिव्य अवतरण के अलावा एक लौकिक अवतरण भी होता है। जैसे भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, वो लौकिक कथा में उनका एक अवतरण है। तो इनका अवतरण कैसे हुआ? सूर्य देव का विवाह छाया देवी से हुआ, और छाया देवी, सूर्य बहुत तेजस्वी थे और सूर्य को तेज देखकर, जैसे वो नई नई पत्नी थी, बहुत सहमी सहमी थी, उनके प्रकाश और उनके गौरव और उनके प्रभाव से बड़ी प्रभावित थी और थोड़ी संकुचित भी थी। शी वॉज लाइक नॉट स्केर्ड एज सच, बट शी वॉज लाइक कम्प्लीटली ऑ अंडर ऑ एंड रेवरेंस। तो वो थोड़ी सी भयभीत थी, और जब उनका पहला समागम हुआ तो सूर्यदेव ने कहा कि आप बड़े डरे डरे हुए थे, इसलिए ये जो पुत्र होगा, मुझे पुत्र होने वाला है, वो उससे पूरा विश्व डरेगा, पूरे विश्व के भय का कारण होगा, और वो है यमराज। तो छाया देवी को बड़ा दुख हुआ कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा धाड़स बंधाया उन्होंने अपना, और फिर अगली बार प्रेम का समागम हुआ, कोई संकोच भय वगैरह नहीं था। तो क्या देखते हैं कि अगली बार संबंध हुआ तो सूर्यदेव ने कहा कि इस बार आपको कन्या होगी, और वो कन्या नदी रूप होगी, और जो भी व्यक्ति इस नदी के जल में स्नान करेंगे वो बड़े भैया के भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। और उसे कहा, नाम बताए, यमी, यमी यानी यमुना देवी। तो ऐसे सूर्य के पुत्री के रूप में यमुना देवी का अवतरण हुआ। इसलिए यमुना देवी का महात्म्य क्या है? यमुना देवी के जल को स्पर्श करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। यमराज ने स्वयं वरदान दिया है अपने भैया यमराज को, वो कई बार पुकारती रही, आइए मेरे घर पे प्रसाद खिलाने के लिए आ जाइए। यमराज आप जानते हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, सबको दंड देना, सबका हिसाब किताब रखना, यमदूतों को कोऑर्डिनेट करना, जीवों को लाना। तो एक दिन वो आए घर पे, और उस समय यमुना देवी ने उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया। तो यमराज जी ने बड़े छोटे बहन को बोला, क्या आशीर्वाद चाहते हो? उसने कहा कि जो भी आपके जल में, मेरे जल में स्नान करेंगे वो आपसे भय के मुक्त होने चाहिए। तो यमराज जी ने उनको भी वहाँ पर आशीर्वाद दिया है, और ये भी कहा है, वो दिन था यमद्वितीया, वो दिन था भैया दूज का, जिस दिन यमराज जी यमुना के घर में भोजन करने आए। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन जो भी अपने बहन के हाथ से भोजन करेगा, वो जो आप आज के दिन बहन के हाथ से भोजन करेगा उसे मेरा डर नहीं होगा, मेरे डर से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही ये कहानी है भैया दूज की। तो यमुना देवी के विषय में ऐसा कहा गया है कि हमारे भी एक प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, माताजी हैं, बहुत वरिष्ठ माताजी हैं। उन्होंने कहा था कि एक सोल्जर था प्रभुपाद के समय पर, एक सोल्जर था, वो कमांडर इन चीफ था। हाँ, वो इतना बड़ा अमेरिकन आर्मी में सेनापति था कि उसके हाथ में करीब करीब 400 जवानों का देहांत हो गया था युद्ध के समय पे। वो हर एक जवान को अपने गोद में लेकर उसका शरीर छूटता था, इतना प्रेम था अपने सैनिकों पर। तो यथावकाश उसका प्रभुपाद से मुलाकात हुई, तो प्रभुपाद जी के उसने अपनी कहानी बताई कि मैं सेना में कमांडर था और अभी निवृत्त हो गया हूँ, और मेरे गोद में 400 से अधिक लोग अपना प्राण छोड़ चुके हैं। तो मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है प्रभुपाद जी, कि मैंने देखा कि जितने भी लोग मेरे गोद में अपना शरीर छोड़ दिए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भय था, एक भयंकर सा भय था। अब मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों इतने डरे हुए लोग मरने के समय क्यों इतना डर डर के मरते हैं, इतना भय और इतना संकोच उनके शरीर में क्यों है। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि मरने के समय अपने कर्मों के अनुसार यमदूत का दर्शन होता है, और यमदूत बड़े भयंकर होते हैं, वो चार आते हैं, चार उस समय। उनका स्वरूप इतना भयंकर होता है, कितना भी ढाड़सी आदमी होगा ना, यमदूत को लेकर डरेगा, तो यमदूत को देखते हुए उनकी मृत्यु होती है, यमदूत उनको लेकर जाते हैं। तो फिर अगला प्रश्न पूछा, अरे यमदूत अगर लेके जाते हैं तो फिर यमदूत से बचना कैसे महाराज जी? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अगर आपके गोद में मरते हुए व्यक्ति को यमुना जी का जल देंगे ना तो एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। तो ये माता जी बता रही है उस भक्त के बारे में। तो माता जी को जब ये पता चला कि प्रभुपाद जी ने उस सोल्जर को जो डिसाइपल बने प्रभुपाद जी के ये कथा बताई, तो वो माता जी भी अपने साथ में हमेशा वृंदावन का यमुना जी का जल साथ में ले जाया करना आरंभ किया उसने। और उसके साथ इतनी श्रद्धा हो गई यमुना जी के जल के विषय में, तो वो अपने साथ लेकर जाते थे। एक बार उसके पिताजी बीमार हो गए, एकदम अंतिम स्थिति में आ गए, तो वो यहाँ से अमेरिका चली गई। वो अभी भी वृंदावन में निवास करती हैं, और तब चली गई वृंदावन से छोड़कर, फिर अपने हवाई अपने अमेरिका में गई। वहाँ पर उसके पिताजी आखिरी स्थिति में थे और बड़े भयभीत थे, बार बार डरते थे, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तो इसको तो पता था कि वो क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया था ना, यमदूत आते हैं उसको ही खाली दिखते हैं, किसी को दिखते नहीं है, जाने वाले व्यक्ति को ही दिखते हैं। तो जब वो पहुंची वहां पर, तो पिताजी बड़ी भयभीत अवस्था में ऐसे घबरे हुए थे, और ऐसे कहते ना शून्य में देख रहे थे, लुकिंग इन टू द जीरो इन द ओब्लिवियन एंड क्राइंग एंड शाउटिंग। तो तुरंत अपने बैग में से यमुना जल निकाला और अपने पिताजी को दिया। जैसे ही ये जल दिया एकदम शांत हो गए पिताजी, पूरा डर वर पसीना आया था उनको, पूरा धड़धड़ हो रही थी, हाथ पांव कांप रहे थे, एकदम शांत हो गए। तो शांत होने के बाद पिताजी को उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? तो उन्होंने कहा कि वो चले गए, जैसे ही आपने मुझे कुछ पिलाया ना, क्या पिलाया आपने मुझे? वो जैसे पिलाया ना वो चार लोग चले गए, ऐसे भागे वो, ऐसे डर के भाग रहे ऐसे वो चारों भाग गए। तो प्रभुपाद जी ने जो बात कही थी उस पर माता जी को बहुत दृढ़ विश्वास हुआ, और उसके बाद वो जल देती रही और कुछ समय के बाद में उनका देहांत हो गया। तो कहते हैं कि अभी इतना अनुभव करने के बाद में हम कैसे विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने भी माता जी को एक कहानी बताई कि हम लोग मायापुर की यात्रा में जा रहे थे, और लंबा सफर है ना, मुंबई से ट्रेन में 33 घंटे का सफर है। तो मैं भी मेरे साथ यमुना जल हमेशा रखता हूँ, ब्रजरज रखता हूँ, पता नहीं किसी का देहांत कहीं हो जाए। हम तो हॉस्पिस में काम करते हैं, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो हॉस्पिस में तो देहांत तो होते रहते हैं, तो हमारे पास हमेशा ब्रजरज और महाप्रसाद और हमेशा रहता है, यमुना जी का जल, राधा कुंड का जल, अनेक कुंडों का जल, तीर्थ रेडी रहता है, हम तुरंत तुलसी तुरंत दे देते हैं, तो मेरे पास भी ये रहता है। तो अचानक मुझे ऐसे खबर मिली कि चार पांच बोगी के आगे एक व्यक्ति का एकदम सीरियस हो गया ट्रेन में वो, तो डॉक्टर के रूप में मुझे कॉल आया। तो मैं भागा, मेरे जेब में से सब सामान लेके मैं भागा वहां पर, और मैं वहां पहुंचा, ऑलरेडी भीड़ हो चुकी थी, सब लोग डरे हुए थे, और वो व्यक्ति एकदम लास्ट स्टेज में था। तो मैंने उसको तुरंत यमुना जल दिया, एकदम शांत हो गया, और वो भक्त जो है एकदम शांति से उसका देहावसन हो गया, शरीर छोड़ दिया ट्रेन में। और अभी आधा सफर बाकी था हमारा, अभी ट्रेन में डेट डिक्लेयर करेंगे तो ट्रेन को बॉडी उधर ही उतार देंगे, वो जहाँ पर आप अगला स्टेशन आएगा वहाँ पर आपको रूल से उतारना पड़ेगा। तो अभी ये गाड़ी जा रही है मायापुर, और उनको मायापुर पहुँचेंगे तो गंगा जी का आश्रय मिलेगा, वहाँ पर क्रियाकर्म होगा, और रस्ते में छोड़ेंगे तो पता नहीं कौन से देश में उतरेगा वो, और कौन देखेगा उनके लिए। तो एज डॉक्टर मैंने सब टीसीओ को बताया कि पेशेंट सीरियस है, अभी तक गुजरा नहीं है, अभी लास्ट स्टेज में है। तो ऐसे करके उसको रखा, लोगों से सराउंड करके रखा उनको, और कलकत्ता में फ़ोन वोन करके सबको रेडी रखा कि उसको तुरंत भगा के ले जाना है, सीरियस होके ये भाव से ले जाना है। और व्यक्ति को यमुना जल पिलाया और बाद में उनको ले गए, भाग कर ले गए, सीरियस ऐसे करके भाग के ले गए, एम्बुलेंस में बिठा कर तुरंत मायापुर पहुंचा दिया और क्रियाकर्म कर दिया। तो हमने भी कई बार ऐसे अनुभव किया है कि मौत के समय, बहुत भयंकर डर के समय, यमुना जी का जल का प्राण करते ही वो भय से आदमी मुक्त हो जाता है। किन किन चीजों से वो व्यक्ति यमदूत के भय से मुक्त होता है? एक है यमुना जल, एक है तुलसी का पत्ता, और एक है ब्रज रज। इन चीजों का स्पर्श होते ही यमराज के दूत चले जाते हैं। यमराज जी को आदेश दिया गया है ना कि जहां पर मेरे बहन जी का जल है वहां पर आपको कुछ काम नहीं है, डोंट कम देयर। तो अभी यमुना जी का देखो, जैसे ही आ गई यमुना जी तो बहुत देर से इंतजार कर रही है ना। हमारे गोवर्धन महाराज भी सत्ययुग में आए थे, सत्ययुग से फिर पुलत से मैं इनको लेके वृंदावन में आए और सत्ययुग से लेकर वहां पर बैठे हुए हैं कि वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में आएंगे कृष्ण भगवान, तब जाकर लीला करेंगे। लेकिन जब समय आया ना वो, तो यमुना जी ऐसे उछालने लगी बड़ी बड़ी लहरों से, बहाना तो बारिश का था लेकिन यमुना जी अपने खुद के आनंद से लहरा रही थी, उछल उछल कर ऊपर आ रही थी क्योंकि उनको कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना था। लेकिन देखिए कृष्ण भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए कैसे व्याकुल हैं। हाँ, कृष्ण भगवान ने एक जगह लिखा है कि अपने पैर ऐन मौके पर बाहर निकाले और यमुना जी वहां तक पहुंच गई, वसुदेव के नाक के ऊपर से पानी गया और भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी ने रास्ता दिया। लेकिन दूसरा एक सुंदर वर्णन ऐसा है कि भगवान ने छलांग लगाई पानी के अंदर, बालक अर्भक यानी नवजात नियोनेट बालक ने छलांग लगाई और पूरे डूब गए पानी में, पूरा स्नान कर लिया भगवान ने उसके अंदर। और भगवान ने स्नान करते तत्क्षण यमुना जी ने रास्ता दिया और तुरंत वसुदेव ने भगवान को कैच किया। मतलब क्या हुआ, अपने अवतरण के कुछ ही क्षणों के बाद भगवान ने यमुना जी को अपना चरणामृत बना दिया। इतना भाग्य है कि उसके बाद में अनंत बार भगवान कूदे, बालक रूप में कूदे, ग्वाल बालों के संग कूदे, गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा किया, नौका विहार किया, हाँ क्या क्या नहीं किया। भगवान ने जब विवाह किया ना राधा रानी के साथ भांडीर वन में, तो उसके बाद में एकांत में राधा रानी को लेकर जमुना किनारे गए, यमुना जी में जल में चले गए। वो राधा रानी ने कमल निकाला यमुना जी से, तो भगवान ने वो छीन लिया, राधा रानी मुरली छीन ली और दोनों फिर छिन्न झपटी करने लगे पानी के अंदर। उसके बाद फिर भगवान ने वो कमल लौटा दिया, राधा रानी ने मुरली लौटा दी, फिर वो काम में मन गए, फिर कई नंदगांव गए, सब जगह संकेत वन में गए, सब जगह विहार करते 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 फिर दोबारा लौट के आए और फिर छोटे से बने और फिर नंदगांव को राधा रानी ने कृष्ण को पहुंचा दिया। तो कितना संग दिया है, बाल स्वरूप में दिया है और छोटे बड़े होने के बाद में दिया है, गऊओं के साथ संग दिया है, उसके किनारे में भगवान भोजन किया करते थे, कमलाकार बैठकर भजन किया करते थे और बड़े होने के बाद में नौका विहार किया है। इसलिए जीव गोस्वामी हमारे कहते हैं, जीव गोस्वामी जी अपने टीका में लिखते हैं, आदि वराह पुराण के ऊपर उन्होंने टीका की है, भाष्य की है, उस पर लिखते हैं कि गंगा जल और जमुना जल का महिमा एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी अगर 100 बार गंगा जी का जल शुद्ध किया जाए तो वो जो बनेगा उसको जमुना जल कहते हैं। ये जमुना जल का महात्म्य है क्योंकि जमुना जल में साक्षात भगवान ने अनंत बार स्नान किया है, जन्म होते के बाद से अनंत बार। और उसी श्लोक में आगे बताया गया है, जिस श्लोक में ये कहा गया है आदिवारा पुराण में कि गंगा जल 100 बार पवित्र होने के बाद में जमुना जल बनता है, उसी में कहा है कि 1000 विष्णु के नाम लेने का मतलब है 1 बार राम का नाम लेना और 3 बार राम का नाम लेने का मतलब 1 बार कृष्ण का नाम लेना। उसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में ये लिखा हुआ है। और ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में 6वें श्लोक में परपोट में लिखते हैं इसी बात को, जीव गोस्वामी का आदिवारा पुराण के भाष्य जो है वो उसको उद्धृत कर रहे हैं। और यमुना जी का एक विशेषता है, गंगा जी की भी विशेषता है, यमुना जी की विशेषता है कि ये दोनों तो तैयार तो नहीं थे लेकिन भगवान ने कहा कि अरे, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हमारे जल में सब लोग स्नान करेंगे, पाप छोड़ेंगे, हमको दूषित करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा ही नहीं होगा, केवल ये बात सच है लेकिन संत लोग भी आपके अंदर स्नान करेंगे, मैं भी स्वयं स्नान करूंगा, जिस चीज अवतार में आऊंगा आपके अंदर स्नान करूंगा। और आपका जो किनारा है, जितना लंबा किनारा होगा, 2500 किलोमीटर का किनारा है गंगा जी को, वो सारा किनारा पितृ तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा, वहां पर रहने वाले सब लोग मुक्त हो जाएंगे। मतलब तीर्थ स्थान का स्थान दिया, महिमा दिया उनको किनारे को। तो इस प्रकार से गंगा जी को भी वो फिर वो बताया कि आपको उनके स्नान करने से आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो फिर दोनों तैयार हो गई है ना। और उनकी महिमा क्या है, वो सब जगह पर जहां जहां बहती है, जहां जहां उन पर आप डुबकी लगाएंगे, वहां वहां पापों से लोगों की मुक्ति हो जाएगी, ये उनकी महिमा है। लेकिन उसमें एक विशेषता है, अगर सूक्ष्म रूप में आप देखेंगे, जब गंगा जी मायापुर नवद्वीप में प्रवेश करती है तो पापों के साथ पुण्य का भी नाश करती है, और पापों के साथ पुण्य का नाश करते हुए प्रेम भक्ति को भी दान देती है, ये विशेषता है। तो जमुना जी वैसे ही जैसे ही जमुनोत्री में निकलती है ना, वहां पर एक ग्लेशियर है ऊपर बहुत बड़ा, कालिंद पर्वत के पास, वहां से निकलती है वो लौकिक रूप में से, वो कालिंद रूप, कालिंद पर्वत पर अदृश्य रूप में आई है और कालिंद पर्वत के आगे दृश्य रूप में प्रकट हुई है। उसके पहले ब्रह्मा लोक से जब उतर रही है तो हमको नहीं दिखाई पड़ रही वो, तो कालिंद पर्वत के आके आपको नहीं दिखाई पड़ेगी जमुना जी कहाँ से आ रही है, लेकिन कालिंद पर्वत से फिर पता नहीं कहाँ से आ रही है ऐसे आपको नजर आएगा। वी डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। जैसे गोमुख में गंगा जी निकलते, गोमुख के पीछे कहाँ से आ रही है पता नहीं है, वहां से अदृश्य है वो। तो वहां से ब्रज भूमि तक जहां जहां भी जमुना जी बह रही है वो सब जगह पर कोई स्नान करेगा तो पाप से नष्ट हो जाएगा, पाप से मुक्ति पाएगा। लेकिन जैसे ही यमुना जी से ब्रज मंडल में वृंदावन धाम में प्रवेश करती है तो पापों के साथ पुण्य का भी ग्रहण कर लेती है, नाश कर लेती है और कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति को देती है। अभी प्रभुपाद जी एक बार केशी घाट में अपने भक्तों के साथ स्नान कर रहे थे, तो भक्त तो प्रभुपाद जी तो 70 साल के बाद में गए थे, तो वो तो बड़े बुजुर्ग थे और उनके सारे भक्त जो है 20, 22, 19 साल के थे, एकदम जवान चुस्त थे। झट से कपड़े उतार कर उन्होंने कुछ छलांग लगाए, जमुना जी में स्विमिंग करने लगे। और प्रभुपाद जी बुजुर्ग गए तो धीरे धीरे कपड़े उतार रहे हैं अपने बुढ़ापे के अनुसार, और धीरे धीरे उतार के फिर पानी में उतरे और आपने देखा होगा उनके फेस से हाथ साफ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि जमुना टेक्स अवे ऑल द सिंस एज वेल एज ऑल द पायस एक्टिविटीज। तो सारे भक्त जो है ना वो बाहर आ गए जमुना जी के, अरे बाप रे ये हमारे पुण्य भी नष्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि पुण्य तो पाप से भी खराब होते हैं। कैसे? जो पाप करते हैं ना तो पाप का बुरा फल मिलता है ना, दुख मिलता है, तो दुख मिलने के बाद में दुख भोगते हुए भगवान की याद आती है, अरे भगवान बचा लो। लेकिन पुण्य का फल मिलता है सुख के रूप में, स्वर्गवास मिलता है और कोई दिव्य लोकों में वास मिलता है, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, किम पुरुष लोक और आगे स्वर लोक, भूवर लोक, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, महर लोक, सत्य लोक, वहां पर तो सूक्ष्म सूक्ष्म आनंद है, इतना आनंद है और लाखों करोड़ों साल की जिंदगी प्राप्त होती है पुण्य करने से। लेकिन जब वो सुख का, अप्सराओं का, नंदनवन का, इंद्र का, देवताओं के शरीर का, सुगंधित शरीर का जब प्राप्ति होती है, इतने भोग मिलते हैं, तो भगवान की याद नहीं आती है, भगवान की बिल्कुल नहीं याद आती है। हमको भी कब याद आती है बताओ? लॉटरी लग गई, अच्छी सुंदर बीवी मिल गई, बहुत धन संपत्ति मिल गई, प्रमोशन हो गया हमारा, हाँ प्रधानमंत्री बन गए, तो कैसे भगवान की याद आएगी? इतना ऐश्वर्य है, इतना अधिकार है, इतना बल है, शक्ति है, धन संपत्ति है, कैसे याद आएगा? जब वो नष्ट हो जाएगा तब याद आएगा, रोग होगा ना, दर्द होगा शरीर में तो याद आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने समझाया है कि पाप जो है उससे पुण्य खराब होता है, क्योंकि खराब और अच्छा हम कैसे तय करते हैं? जो भगवान की विस्मृति दिलाता है वो खराब, और जो भगवान की स्मृति दिलाता है वो पुण्य वाली, वो ऑस्पिशियस, वो शुभ कहते हैं। शुभ अशुभ की व्याख्या कैसे की गई है? शुभ वो होता है जो भगवान की याद दिलाता है, भले वो हमें भयंकर दर्द दे, और अशुभ वो है जो भगवान को भुला देता है, भले वो इंद्रियों को सुख दे। तो ये जमुना है वृंदावन धाम में, उनका स्नान करना यानी बहुत बहुत भाग्य की बात है। और इस ज्ञान के साथ, इस अनुभूति के साथ, इस विश्वास के साथ जब हम स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से जमुना जी का एक डुबकी हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को दिलाएगा। और ये जमुना जी का बहुत विशिष्ट सेवा है। कैसे? इसमें अनंत घाट है। आदि बरा पुराण में बरा भगवान स्वयं बता रहे हैं, 24 घाट का वर्णन तो खुद किया उन्होंने वहीं पर, वहीं के बैठे बैठे, वो ध्रुव घाट, प्रहलाद घाट और कितने घाट है वहां पर। ध्रुव जी ने वहां पर तपस्या किया है यमुना जी में स्नान करके, और वृंदावन में केशी घाट, इमली तला, कालिया घाट, मदन टेर, कितने सारे, भ्रमर घाट, जुगल घाट, पानी घाट, जगन्नाथ घाट, कितने सारे पवित्र घाट है। वो पानी घाट नाम का एक गांव घाट है, अच्छा नाम पानी नहीं है उसका, फणी, फणी घाट, फणी गांव नाम है उनका, उसका उन्हें पानी हो गया। तो फणी मतलब क्या? फणी यानी फणिंद्र, यानी कौन? बलराम जी। कहते हैं अनंत शेष के फणिंद्र यानी अनंत शेष, बलराम जी का स्वरूप है वो। तो जब वसुदेव वहां निकले ना तो यहां से फणिंद्र निकले उनको छत्र छाया देने के लिए, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा पानी घाट। ऐसे विचित्र लीलाओं का एक एक घाट है जहां भगवान ने विचित्र लीलाएं की। और आज भी मैं जानता हूं कि कई ऐसे मेरे पहचान के ब्रजवासी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग भी हैं, कुछ भी हो 3 बजे सवेरे स्नान करते हैं जमुना जी में, कौन से भी मौसम में हो। तो 3 बजे ठंड में स्नान करना आज की तारीख में, दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में बहुत मुश्किल, लेकिन वो ना चुके हुए हर रोज 3 बजे जमुना जी में स्नान करते हैं। अभी तो कहते हैं जमुना जी में तो जमुना जल है ही नहीं, दिल्ली में हथिनी कुंड पे उनको डाइवर्ट किया गया और आगे 140 किलोमीटर तक जमुना जी में जमुना जल का प्रादुर्भाव ही नहीं है, ड्राई बेड है, उसके आगे वो सब शहरों का जो मल मूत्र है वो नदी के रूप में वहाँ आगे प्रकट होता है। तो अभी अभी कहते हैं कि वृंदावन में जमुना जी के रूप में तो केवल मलमूत्र का प्रवाह ही हो रहा है, फिर भी वो स्नान करते हैं, क्योंकि मुझे मुझे मैं भी पुरोहित के रूप में एक भक्त के माता और पिता दोनों का मैंने वहाँ पर अस्थि विसर्जन किया केशी घाट पे। और तभी ये बहुत हल्ला मच रहा था कि जमुना जी में तो जमुना जल है ही नहीं, मलमूत्र का ये दिल्ली का जल वहाँ बहता है। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मैंने तो श्रद्धापूर्वक तो वहाँ पर अस्थि विसर्जन का विधि किया हमारे गुरु भाई के लिए, लेकिन आप मुझे ज़रा समझाइए। तो उन्होंने कहा यमुना जी नहीं, अगर समझो ये सत्य है, समझो समझ लो कि सत्य है, लेकिन यमुना जी पात्र तो है ना जहाँ पर यमुना जी बही थी, जमीन के नीचे तो यमुना जी का प्रवाह अभी भी है। और जमीन जी का नीचे प्रवाह नहीं भी होता तो यमुना जी के पात्र में इतनी शक्ति है कि यमुना जी का महात्म्य आज भी वहाँ प्रकट है, अगर जल भी समाप्त हो जाता है और उस रेती में अगर आप अस्थि विसर्जन करते हो तो भी उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इतना महिमा है। तो मेरा तो विश्वास था ही, लेकिन और दृढ़ हो गया गुरु महाराज के वचन से, उसका श्रवण करने से। वहाँ पर एक देवरा बाबा घाट है, वो देवरा बाबा नाम के बड़े सिद्ध योगी थे, इंदिरा गांधी भी उनको मिलने आया करती थी वृंदावन में, वो मचान पर बैठते थे यमुना किनारे मचान पर, और वहीं से लोगों से मिलते थे, वहाँ नीचे आकर इंदिरा गांधी बात करती थी उनसे, बड़े सिद्ध महात्मा चमत्कारी बाबा थे वो। वो घाट जो है वहाँ पर वृंदावन में यमुना जी के किनारे अंतिम संस्कार होते हैं, और कहते हैं अगर कोई, मैंने कई लोगों का संस्कार वहाँ किया है तो मुझे वो आप गोस्वामी जी लोग कहते हैं कि वहाँ पर अगर किसी का देह पहुँचता है, भले वो दिल्ली में गुजर गया हो, कहीं फॉरेन में गुजर गया हो, और उसका बॉडी वहाँ पर आता है और अंतिम दाह संस्कार अगर वहाँ पर होता है तो वो अंतिम गंतव्य स्थान है, उसके बाद में पृथ्वी पर प्रवेश नहीं करेगा वो, जिसका अगर देह संस्कार वहाँ पर हो जाएगा। और क्या करते हैं ना, वो त्रिडी उठाते हैं ना, उसको वहीं पर जल में डुबाते हैं और वहीं पर अग्नि देते हैं उसको, और वहीं से उसको झाड़ू से वो सारी अस्थि जो है ना वो वहीं से जल में डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से कहीं और ले जाना है, कल सवेरे आना है और लकड़ी का जो भी ढेर जमा हो गया हड्डी वड्डी का, उसको झाड़ू से वहीं से जल में डाल देना है, बस खत्म। कोई सेपरेट अस्थि का कार्यक्रम नहीं उधर कुछ, दाह संस्कार एक ही जगह पर होता है। वहाँ पहुँचने के बाद में कहते हैं कि लास्ट स्टॉप है ये, यहाँ पर आने के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौट के नहीं आता है, वो आगे की यात्रा करेगा वो वहाँ से। ऐसा महिमा है यमुना जी का। तो ये सब हमने अपने आंखों से देखा है, लोगों की श्रद्धा, लोगों की निष्ठा और इसका बल जो है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवत के षष्ठी स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि यमुना जी में स्नान करने का मौका मिले इसलिए मैंने वृंदावन धाम में इस्कॉन सेंटर खोला है। और यमुना जी में स्नान करना एक व्रत के जैसा है, आनंद की बात तो है लेकिन एक व्रत भी है, क्योंकि नियमित रूप से वहाँ पर स्नान करना ये बहुत बड़ा व्रत माना गया है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक व्रत है ये, और मेरे भक्त इस्कॉन के नित्य नियमित रूप से यमुना जी में स्नान करें, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, प्रेमा भक्ति प्राप्त करें और गोलोक धाम की प्राप्ति करें, इसलिए मैंने वृंदावन धाम में यमुना किनारे पे मंदिर बनाया है। हमारा इस्कॉन का मंदिर कहाँ पर है? रमन रेती। रेती कहाँ होती है? यमुना किनारे होती है। हमारा भक्ति वेदांत ऑस्पिस कहाँ पर है? आदिवराह घाट, विश्राम घाट से आकर उन्होंने वराह देव ने वहाँ पर भी विश्राम किया है, इसलिए उसको आदिवराह घाट कहा है। हमारे ऑस्पिस के सामने ही वराह देव का मंदिर है। तो ये सब यमुना जी का रेती है। जब हमने ऑस्पिस का वो शुरू किया था ना खनन करने के लिए, एक्सकेवेशन जमीन पे, तो 25 फीट तक हम लोग जमीन के नीचे गए थे, लेकिन सब रेती ही रेती ही रेती लगी, कोई पत्थर लगाए नहीं, क्योंकि यमुना का किनारा है वो। तो फिर 25-30 फीट के अंदर जाकर सीमेंट का प्लिंथ बनाया गया, कंक्रीट का बेस बनाया गया, उस बेस पर भी बिल्डिंग खड़ा किया गया। अक्सर हम क्या करते हैं, आके देखते हैं जिसको पत्थर होगा तो फिर आप भी उसमें बांध काम शुरू कर देते हैं, फाउंडेशन बना देते हैं। तो रमन रेती ये भी यमुना किनारा है। उस समय जब प्रभुपाद ने जमीन लिया था ना यमुना किनारे, तो वहाँ जंगल था, वहाँ पर शेर और सिंह आया करते थे, खूंखार जानवर रहा करते थे। इतना घना जंगल था कि वहाँ से राधा कुंड तक 28 किलोमीटर का जो रास्ता था उसमें सूरज की एक भी किरण जमीन को स्पर्श नहीं करती थी, इतना घना जंगल था, दिन में अंधेरा हुआ करता था। ऐसे जगह पर प्रभुपाद जी ने अपना मंदिर बना। लोगों ने पूछा क्यों बांध रहे हो जंगल में, तो प्रभुपाद ने कहा रुको और देखो, वेट एंड वॉच। और आज कितना वृंदावन कहाँ तक फैल गया, कितना एक्सटेंड हो गया वहां पर तक। और एक बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो पूरा वृंदावन जो है ना एक तरह से यमुना किनारा ही है, क्योंकि चारों तरफ गोल घूम के यमुना जी जा रही है, तो इधर भी किनारा है, इधर भी किनारा है, तो बीच में भी किनारा ही है, सब जगह किनारा ही किनारा है। और वो पूरा रास मंडल था, क्योंकि बंसीबट भी उसी किनारे है, वहीं पर गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे, और वहीं पर गोपीनाथ ने बैठकर बंसीबट की शाखा पे ऊपर मुरली बजाई थी, शरद पूर्णिमा के बीच रात में बैठकर, और वहीं पर रास रचाया था। तो करोड़ों गोपियां थी, और वो कहते हैं वर्णन आप पढ़ेंगे ना भागवत में दशम स्कंद में, तो गोपियां ऐसे नहीं कि लोही बाजार से गई थी, हाँ ऐसे वर्णन पढ़ते क्या हम लोग, जहाँ दुकानों की उसके बीच में चली गई थी वो, नहीं वर्णन क्या आता है, बीच रात में अंधेरे घने जंगल में से गई थी वो, और बंसीवट तो पूरा होस्ट हैज म्यूटेड मी, वेरी गुड। तो बंसीवट को जब पहुंची तो बंसीवट तो बड़े घने जंगल से उनको बहुत अंदर जाना पड़ा था, और भगवान भी क्या पूछ रहे हैं, इतनी रात गए इतने घने जंगल में आने का क्या जरूरत थी आपको अपने कर्तव्यों को छोड़कर। इसका मतलब क्या कि पूरा जो बंसीवट और वृंदावन का इलाका था वो पूरा घना घना जंगल था, वो रहने की बस्ती नहीं थी वहां पर, पूरे घने जंगल में पूरा वृंदावन बस गया। आज ये लोही बाजार और आश्रम और ये सब महल जब बने हुए हैं सब वो घने जंगल में बने हुए हैं, नहीं तो पूरे बीच घने जंगल में ये सब रहा करते थे स्थान पवित्र। तो और आगे जाकर भी 11वें स्कंद के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यमुना जी जो है वो भगवान का चरणामृत है, ये स्वयं प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है उसका। तैसे यमुना जी के बारे में क्या कहें, माम पुना तु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी, ऐसे उनका यमुना अष्टक में सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है कि यमुना जी कैसे भगवान की सखी भी हैं, भगवान की चतुर्थ पत्नी भी है, ये भी वर्णन आता है। देखिए यमुना जी एक तो नदी के रूप में बह रही है, ब्रज की शोभा बढ़ा रही है, वृंदावन जम रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर कालिंदी आभृत आभृत कालिंदी निरे राज हम सकेली कोरे ताहे शोभे कनक कमल आभृत कालिंदी निरे राजहंस केली को रे, इसमें राजहंस घुमा करते हैं, सौगंधी का कमल खिला करते हैं, मंद मंद शीतल हवा चलती रहती है, सब सुंदर कालिंदी का वर्णन आया है। तो वो तो नदी रूप में भगवान को आनंद दे रही है, साथ साथ में देवी के रूप में उसने भगवान से विवाह भी किया है। जब भगवान अर्जुन को लेकर खांडव प्रस्थ को जलाने के लिए गए थे तो थके हुए बैठे हुए थे, तो प्यास लगी तो भगवान ने कहा जाओ जल लेकर आओ, तो अर्जुन यमुना जी का जल लेने गए तो यमुना जी वहां पर देवी रूप में विहार कर रही थी, ये जानते हुए कि विष्णु स्वयं वहां पर अवतार लेकर आए हैं, क्योंकि विष्णु को प्राप्ति करने के लिए वो अपने ही जल के नीचे तपस्या कर रही थी। उनके पिताजी ने उनके ही जल के नीचे एक महल बना दिया था, उसके अंदर यमुना जी देवी के रूप में तपस्या कर रही थी विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। जब कृष्ण के रूप में आए, विष्णु भगवान स्वयं कृष्ण तो विष्णु के स्रोत हैं, विष्णु उनके अवतार हैं, तो विष्णु जो उसके जो स्रोत हैं उगम अवतारी अवतार नहीं अवतारी पुरुष जब प्रकट हो गए, नर नारायण दोनों प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, आप तो अविवाहित लगती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, किस कार्य से आप घूम रही हो। तो उस समय यमुना जी कहती है कि मैं तो नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। तो उन्होंने फिर जाकर बताया कृष्ण को कि ऐसे ऐसे कोई कन्या घूम रही है, वो आपका नाम कह रही है, आपसे विवाह करना है उसको। तो झट से कृष्ण उठे और झट से उस कन्या का हाथ पाणि ग्रहण किया और उसको पत्नी के रूप में ग्रहण किया उन्होंने। तो ऐसे चतुर्थ पटरानी के रूप में वो भगवान की पत्नी बनी और भगवान ने उनको द्वारका में निवास दिया है पटरानी के रूप में। 8 पटरानी के बीच में एक पटरानी उनकी यमुना देवी है, तो ये भी उनका विशेष सेवा है। एक स्वकीय माधुर्य, एक स्वकीय रस में, एक परकीय रस में। परकीय रस में वृंदावन धाम में भगवान के 5 रसों की लीलाएं उन्होंने अवलोकन किया है। देखिए एक है गोवर्धन जी महाराज, उन्होंने भगवान के 5 रसों की लीलाओं का अवलोकन किया है, और एक है यमुना जी, यमुना जी के किनारे भगवान के 5 रसों की लीलाओं का प्रकट हुआ है, और वो सब परकीय भाव है, माधुर्य भाव है, उसमें ऐश्वर्य का प्रादुर्भाव नहीं है। और वही जमुना देवी भगवान के ऐश्वर्य लीला में द्वारका में उनकी पत्नी बनकर रहती है। और आखिर में जाकर जमुना जी का महात्म्य सुनिए आप, जमुना जी को ही भगवान के सारी पत्नियों का उद्धार करने का भाग्य प्राप्त हुआ। कैसे? मैंने आपको सुबह कहा था कि परीक्षित महाराज और बज्रनाभ सब लोगों को लेकर वृंदावन में आए, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जमुना जी से हुई। अभी वो जमुना जी उनके सौतन भी है और यहाँ पर नदी के रूप में उछल रही है आनंद से, और सब पत्नियां रो रही है। तो जमुना किनारे पहले पहुंचती है और कहती है, अरे जमुना, तुम तो हमारे सौतन हो, यू आर अवर को वाइफ, तो तुम लोग कैसे आनंद में उछल रही हो और हम लोग रो रहे हैं। तो जमुना जी एक बहुत सुंदर बात कहती है उनकी, वो बड़े नोट करने लायक है। वो बात यह है कि हम ब्रजवासिनी पत्नी है भगवान की, और ब्रजवासिनी पत्नी हम सब राधा रानी का अंश हैं, और राधा रानी का अंश होने के नाते विरह में भी आनंद का अनुभव होता है। विरह है फिर भी आनंद का अनुभव होता है। तो रानी को कुछ समझा नहीं, तो बड़े रहस्य की बात है। हाँ, विरह में तो दुख होता है, आनंद कैसे होता है? हम तो रो रही हैं विरह में भगवान के, और आपको भी विरह है फिर भी आप आनंद में उछल रही है, आपकी इतनी लहरें उछल रही है। तो यमुना जी ने कहा कि अभी आप वज्रनाभ को भी कहा कि इनको लेकर आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहाँ संकीर्तन करो, फिर उद्धव जी महाराज प्रकट हो जाएंगे गुलमलता के रूप से, और उद्धव जी महाराज इस तत्व को आपको पूरे विस्तार रूप में समझाएंगे, तब आपका दुख का निवारण होगा। तो यमुना जी के निर्देश के अनुसार वो उनको लेकर गए हैं कुसुम सरोवर, वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए हैं, वहां पर रानियों ने संकीर्तन किया है। उद्धव जी प्रकट होने के बाद उन्होंने 30 दिन तक श्रीमद् भागवत का कथा सुनाया है उनको, और श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करते ही उनका विरह नष्ट हो गया, यानी कृष्ण का सान्निध्य का अनुभव उनको प्राप्त हुआ। यानी कि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, इसलिए श्रीमद् भागवतम ध्वनि ध्वनि रूप में है। वो ध्वनि का श्रवण करते ही, पहले शब्द का श्रवण करते ही उनको कृष्ण के उपस्थिति का अनुभव हुआ, और वो रोना वोना बंद कर दिया उन्होंने, और एक महीना भर आनंद से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया। जब उनका प्रसंग आया, खुद को भी देखा उन्होंने अपने लीलाओं में, उनके विवाह का प्रसंग आता है ना दशम स्कंद में, आगे विवाह का प्रसंग आता है उनके, तो वो अपना प्रसंग का वर्णन में अपना दर्शन किया उन्होंने, और 12वें स्कंद के बाद में अपने दिव्य रूप में वो सब विलीन हो गई और गौलोक धाम चली गई। इसका मतलब भगवान के महिषियों का, भगवान के पटरानियों का 16108, इसमें वो स्वयं भी सम्मिलित हैं, भगवान की सारी पटरानियों का उद्धार जमुना जी के निर्देश से हुआ है, जमुना जी की कृपा से हुआ है। ये उसकी महान स्थिति है, ये जमुना जी का महात्म्य है। भगवान के साक्षात महिषियों का उद्धार करने का भाग्य भी जमुना जी को भगवान ने दिया, एम्पावरमेंट किया है, शक्ति आवेश किया है जमुना जी के अंदर। इतनी महिमा है जमुना जी के, जमुना जी के एक एक कण में, एक एक जल के कण में इतना महात्म्य है, प्रेम का संपृक्त द्रव है वो। जमुना जी का जल जल नहीं है, वो प्रेम का द्रव रूप स्वरूप है। लिक्विड लव ऑफ राधा एंड कृष्ण इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि निर्माण कैसे हुआ है, जब राधा कृष्ण और गोपियां रास रचा रही थी तो उनके प्रेम के आवेश में ये ज्वल का निर्माण हुआ था, और उसको प्रवाहित रूप में नदी का स्वरूप प्राप्त हो गया था। आप समझिए इसका महात्म्य कैसा है। तो इस तरह से जमुना जी के बारे में कितना कहे, क्या कहे, कमी है, लेकिन जमुना जी का स्मरण करना भी यमराज से और यमलोक के भय से मुक्ति दिलाता है। अभी हम और एक महत्वपूर्ण चीज की व्याख्या करेंगे, महात्म्य सुनाएंगे, वो है धाम की रज। सुबह से हमने कई बातें बताई आपको, पहले यमुना जी, फिर गोवर्धन, फिर वृंदावन की भूमि, फिर उसके बाद गौ, उसके बाद में बंदर के बारे में बताया, वृक्ष के बारे में बताया, अभी यमुना जी के बारे में महात्म्य बताया, अभी रज का महिमा सबसे आखिर में बताना जरूरी है। ब्रज रज के बारे में ऐसा कहा गया है कि ब्रज रज ही, वृंदावन की रज को ब्रज रज कहते हैं, ब्रज भूमि के रज की धूल को ब्रज रज कहते हैं। वो इतनी पुनीत और पवित्र क्यों है, क्योंकि भगवान के चरणों के तलों का स्पर्श केवल उस भूमि को हुआ है। भगवान कहीं भी नंगे पैर नहीं चलते हैं, जहाँ जहाँ ऐश्वर्य लीला करते हैं सब जगह जूता पहनकर मखमल पे चलते हैं, रथ में चलते हैं, तो वैकुंठ के भूमि को भी भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ब्रज में जो है बिना चप्पल के छोड़ा ऐश्वर्य छोड़कर आते हैं। तो इसलिए राधा रानी भी वैसे ही आती है, सब गोपियाँ भी वैसे चलते, ग्वाल बाल भी, सारे गोलोकवासी जो नीचे उतरे हैं वो सब लोग नंगे पैर चलते, सबके चरणों का स्पर्श तलवों का स्पर्श ब्रज भूमि को होता है, इसलिए वहां की धूल बड़ी पवित्र मानी गई है। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि अगर हाँ खाली मतलब ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सोचना जरूरी है, अगर इफ क्या है वो इफ, कि हमें अगर सारे वैकुंठों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, सारी दौलत सारी संपत्ति वैकुंठों के, एक वैकुंठ में लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, अनंत लक्ष्मियां कोटि कोटि लक्ष्मियां जो है एक विष्णु की सेवा कर रही है, ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ जहां पर विराजमान है, ऐसे सारे वैकुंठों का अगर धन संपत्ति आपको प्राप्त हो गई, सपना अच्छा है मुमकिन नहीं है ये, लेकिन प्राप्त हो भी गई तो वो सारी धन संपत्ति से आप वृंदावन धाम के रज का एक कण भी खरीद नहीं सकते, ऐसा लिखा है उसके अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो ऐश्वर्य है, लेकिन जो प्रेम का जो ऐश्वर्य है, प्रेम का जो माधुर्य है, प्रेम का धन जो है, वो आप इस ऐश्वर्य से तुलना नहीं कर सकते हैं। एक एक कण में राधा और कृष्ण के प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए कहा गया है चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। एक एक कण जो है भूमि का वो चिंतामणि है, दिव्य है, ऐसे रज का महात्म्य बताया गया। अभी एक सुंदर कथा आती है, शंकराचार्य जी जब ये अवतार लिए ना, तो अंदर से शंकर जी भगवान है, भगवान के परम भक्त है, लेकिन बाहर से वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। उनका एक नियम था, वो जहां जहां जाते थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर क्या करते, जहां वो बैठने वाले हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, जहां पर वो बैठते थे उस भूमि को पहले जाकर खोदते थे, इसको कहते हैं उत्खनन यानी एक्सकेवेशन। समझो अभी यहां बैठने वाले हैं इस आसन पर, तो वो आसन की जगह खोदते थे पहले जाकर, वहां की मट्टी निकालते थे और बाहर फेंकते थे, फिर वो मट्टी के बाद में क्या करते हैं, मुख्य भूमि मार्जन करते थे, उसको ना पवित्र जल से उस छिड़केंगे, लिप देते थे उसको। तो पहले उत्खनन, फिर पवित्र मट्टी से मार्जन उसका पूरा, उसके बाद जल सिंचन, उसके बाद में आसन कुशा, और उसके बाद में उनकी गद्दी, उसके बाद में वो बैठकर प्रचार करेंगे। मतलब वो भूमि में जो पाप छुपे हुए हैं वो शंकराचार्य को स्पर्श नहीं करेंगे। तो एक बार ये सब जगह होता, जहां भारत भर उन्होंने भ्रमण किया, हर जगह पर बैठने की जगह पर ऐसा काम होता था। तो एक बार वो ब्रज भूमि की ओर आने लगे, तो जब ब्रज भूमि की ओर आने लगे तो उन्होंने पहले भूमि का उत्खनन करने को मना कर दिया, मतलब कोई खोदने की जरूरत नहीं। तो शिष्यों को आश्चर्य हुआ, महाराज जी अरे उत्खनन नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, हाल ही इसको लिप दो और सींच दो। और थोड़ा पास में आए तो उन्होंने बोला कि इसको खोदना तो नहीं आपको, लेकिन लिपने की भी जरूरत नहीं, खाली जल छिड़क दो उसके ऊपर। और साक्षात जब ब्रज में आए ना, एक्चुअल ब्रज में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा उत्खनन भी नहीं करना है, लिपना भी नहीं है, मार्जन भी नहीं करना है, जल सिंचन भी नहीं करना है। और ये कहते ही वो सबको आश्चर्य हुआ, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। लेकिन ये तो उनको आश्चर्य हुआ है तो मना कर रहे, लेकिन और आश्चर्य की बात उन्होंने क्या की, जहां पर बैठकर वो कथा करने वाले थे उस भूमि में ये लोटपोट हो गए, ये सारे रोलिंग इन द डस्ट। तो बोले गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने गोविंदाष्टक गाया, स्वयं स्फूर्त निर्माण किया गोविंदाष्टक का। अभी इसका एक श्लोक देखिए, गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम, गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम, मतलब क्या, परम ब्रह्म के चरण भी, वो तो मायावाद की बात करते हैं ना, उनकी भाषा ही वैसे, तो क्या कह रहे हैं, परम ब्रह्म यानी हमारी दृष्टि से कौन परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण भगवान, परम ब्रह्म के चरण की कंज यानी जो धूल है उसके कणिका से, उसके विभाजन से भी, उसके जो कणिका के अंग हैं, रिंगण जो कंज के कण है कणिका, उससे अभिषिक्त यानी उसके द्वारा जिसका अभिषेक हुआ है, ऐसी ये भूमि है और ऐसी ये शुचितम पवित्रतम ब्रज रज है, जिसके लिए सुरेंद्र यानी इंद्र जो देवताओं के इंद्र हैं वो भी आदिकाल से अभिलाषित हैं, मतलब उसको चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, वो ये रज है। इस कण में इस रज से पृथ्वी का अभिषेक हुआ है, ऐसा कहते हैं, जो रज भगवान के चरणों को छुई हुई है वो यहां पर छूकर पृथ्वी का अभिषेक कर रहे हैं। तो शंकराचार्य ने बड़े अद्भुत तरीके से ब्रज का रज का महिमा लोगों के सामने प्रकट किया, अपने उदाहरण से, प्रवचन से नहीं। गोविंदाष्टकम तो बनाया उन्होंने, लेकिन अपनी क्रिया से ज्यादा प्रमाणित कर दिया कि ब्रज रज का महात्म्य क्या है। आए थे प्रचार भगवान के मायावाद का, निराकारवाद को प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन हृदय से भक्त थे वो। वैसे ही वल्लभाचार्य जी का भी उदाहरण है। एक प्रभुदास जलोटा थे उस समय पे, जो वल्लभाचार्य ने, उनके पास गोपाल जी थे ना, गोपाल जी की सेवा करते थे, तो गोपाल जी को भोग लगाया उन्होंने और उसका महाप्रसाद जो प्रभुदास को दिया, बोला ले लो प्रभुदास, ग्रहण कर लो। तो प्रभुदास ने कहा अभी तक मैंने स्नान नहीं किया है, इसलिए मैं स्नान के बाद में ग्रहण करूंगा। तो वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया है, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजहा यत्र वृंदावन तत्र लक्ष्य अलक्ष्य कथा कृत। आगे क्या बोलते हैं, जलद अपि रजह पुण्यम रजसो अपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा अस्नात्वा कथा कृत। बहुत सुंदर कहा है। इसका मतलब क्या है, ये वृंदावन धाम है, इसके वृक्ष वृक्ष पर वेणुधारी यानी कृष्ण बैठे हुए हैं, पत्रे पत्रे यानी हर एक पत्ते पर चतुर्भुज यानी हमारे भगवान बैठे हुए हैं, पत्ते पत्ते पर भगवान का अस्तित्व है। तो ऐसे वृंदावन में लक्ष्य और अलक्ष्य, प्राप्त करने जैसा और अप्राप्त करने जैसा क्या है। अभी आपने स्नान नहीं किया तो वो अप्राप्त करने जैसा हो गया ना प्रसाद, स्नान करने के बाद प्राप्त करने जैसा हो जाएगा, या आप सोच रहे हैं लक्ष्य अलक्ष्य, लेकिन ऐसा कथा कुतः, कहां पर ऐसा है, कुछ है नहीं ऐसा। फिर क्या कहते हैं, वृंदावन का जो यमुना जी का जल है उससे रज ज्यादा शक्तिशाली है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे जलदपि रजह पुण्यम रजसोपि जलहम वरम, अरे कभी जल ज्यादा शक्ति नजर आता है, कभी रज ज्यादा शक्तिशाली आती है। जहां पर दोनों दिव्य है, ना जल किससे रज से अधिक प्रभावशाली है, ना रज प्रभाव से जल से अधिक है, दोनों समान प्रभावशाली है। तो ऐसी जगह पर यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा अस्नात्वा कथा कृतम, वहां पर स्नान हुआ या नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है। तो ये रहस्य जो है ब्रज रज का महत्व वल्लभाचार्य ने प्रभुदास के लिए प्रकट किया, और प्रभुदास ने तुरंत, मतलब क्या बताया ना, अलक्ष्य लक्ष्य मतलब क्या, ग्राह्य और त्याज्य, क्रिया ग्रहण करने योग्य क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, ग्राह्य और त्याज्य, इसका जो रहस्य है उन्होंने प्रकट किया और बताया कि वृंदावन में त्याज्य और ग्राह्य कुछ नहीं, सब कुछ ग्राह्य है। तो तुरंत प्रभुदास ने बिना स्नान किए प्रसाद ग्रहण कर लिया। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो रज है ना वृंदावन की, इसमें बहुत सुंदर शब्द भी प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि परम ब्रह्म कृष्ण जो है ना, वो स्नान कराने के बाद, मैया शंख से स्नान कराती है घर पे, हाँ बहुत पवित्र जल से, उसके बाद में चंदन लगाती है, अगुर लगाती है, श्रृंगार करती है बहुत सुंदर, उसके बाद में जाकर ये लुट लुटी करते हैं। मतलब क्या लुट लुटी, यानी रज में जाकर स्नान करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, लुट लुटी कहते हैं उसको, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए ये रज का महत्व समझना बहुत मुश्किल है वृंदावन का। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैकुंठ का भी धन इसको खरीद नहीं सकता है। उसके बाद में लक्ष्मी, अब ये कहाँ कहाँ गया है, कृष्ण बुक हमारा जो है ना, प्रभुपाद जी का दशम स्कंद, उसके 82वें अध्याय में प्रभुपाद ने लिखा है कि लक्ष्मी स्वयं ये ब्रज की राज, लक्ष्मी तो वैकुंठ की है ना, तो वैकुंठ की सम्राज्ञी है, उसका ब्रज में क्या काम, ऐश्वर्य का ब्रज में कुछ काम ही नहीं है। लेकिन वैकुंठ की सम्राज्ञी लक्ष्मी देवी भी अपने छाती पर ब्रज रज रखना चाहती है, क्योंकि वृंदावन की रज जो है वो कृष्ण से अलग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि वृंदावन की रज कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए जब हम ब्रज रज लाते हैं, जैसे अभी आपको मैं बता देता हूं, अभी आप लोग अभी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, आप सबके लिए पोस्ट हो गया क्या, कल ही आपके नाम से भारत में जितने लोग हैं उनको वृंदावन की रज पोस्ट कर दी गई है, आपको ये पहुंच जाएंगे कुछ ही दिनों में, आज कल परसों में, जब जैसे दिवाली का समय है, आपको वृंदावन की रज घर पहुंच जाएगी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसके बारे में, प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन से रज लेना मतलब कृष्ण के चरणों से ही आप रज ले रहे हो, जहां पर कृष्ण चले हैं तो कृष्ण ही स्वयं रज के रूप में आप में घर में प्रवेश करेंगे, और वो आप माथे पर लगा सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, उसका पूजन भी कर सकते हो। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे दशम स्कंद में 30वें अध्याय में तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना भी पावित्र्य, इसको इंग्लिश में लिखा गया होलीनेस, जितना भी पावित्र्य सभी तीर्थों में होता है वो कृष्ण के चरणों के रज से ही प्राप्त होता है। जितने भी तीर्थ इस विश्व में हैं, उसको उसका जो पवित्र है, तीर्थ को पवित्र मानते हैं ना, तीर्थ का जो पवित्र है, द प्यूरिटी ऑफ द तीर्थ इज अचीव्ड बाय द डस्ट ऑफ कृष्णास फीट विच इज ब्रज रज। और सारे देवता भी इस ब्रज रज को पूजनीय मानते हैं। आगे जाकर जैसे ही अक्रूर ने अक्रूर घाट पे वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या किया, पूरे भागवत में फेमस है उन्होंने क्या किया। इतने बड़े अक्रूर जी कंस के अधिकारी थे, मंत्री थे उसके दरबार में, बड़ा ऐश्वर्य था उनके पास, फिर भी जूता निकाला उन्होंने और तुरंत रथ में जूता उतार कर वृंदावन के रज में लोटपोट हो गए, क्योंकि कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों का दर्शन किया उन्होंने वृंदावन के रज में। अभी किसी बड़े अधिकारी को आप समझो, कोई आपके बंबई में कोई सूट बूट पहन के अमेरिका का अधिकारी आ गया और बंबई के फुटपाथ में लोटपोट होने लगा तो आपको लगेगा पागल हो गया आदमी, ये इज गॉन मैड, पेपर में आएगा और CNN में दिखाएंगे कि अमेरिका से अधिकारी आए और बंबई के झोपड़पट्टी के रस्ते में लोटपोट हो रहा है सूट पहन के। वो भी वैसे ही अक्रूर जी महाराज कंस के दरबार के अधिकारी राजवस्त्र पहने हुए हैं, रथ से उतर कर, वो भी बहुत बड़ा दिव्य रथ है उनके पास ऐश्वर्य संपन्न, उसमें से उतर कर ब्रज के मट्टी में लोटपोट हो रहे हैं, मतलब लौकिक दृष्टि से एक पागल जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि से बहुत बुद्धिमानी कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे इस समय पर वो बहुत लोभ हो रहा है इस कहानी को बताने के लिए कि ये ब्रज रज का क्या महत्व है और ब्रज रज में निकले हुए चरण चिन्हों का क्या महत्व है भगवान के। जब भगवान को 5 साल उम्र होने के बाद में बड़ी गायों का जिम्मेदारी सौंपा गया, जो इस साल हमारे 22 तारीख को है गोपाष्टमी, उस दिन मैया 2 जोड़ी जूता और 2 छतरी लेकर आई और अपने बालकों को कह रही है, देखो कृष्ण बलराम अभी तो आप तो पास पास जाया करते थे वत्सपाल के लीला करते हुए, बछड़ों को लेकर बच्चियों को लेकर जा रहे थे, अभी गायों को लेकर दूर दूर जाना पड़ेगा, तो दूर दूर वन में पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, क्या क्या होंगे, तो अभी आपको पैर में कष्ट होगा तो आपको जूता पहनना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर आपके पास हमारे सारे गायों को पहनने के लिए जूता है और हर एक गाय के लिए छतरी है तो ही हम खरीद सकते हैं, तो ही हम ले सकते हैं। हाँ, यथा गावा तथा गोविंदा तथा गोपाला, ऐसा भगवान ने बताया, जैसे गौवें रहती है वैसे ही गौपाल को रहना चाहिए। अगर गौवें जूता नहीं पहनने वाले तो गौपाल को भी जूता नहीं पहनना चाहिए, अगर गौवें छाता नहीं ले सकती है तो हमको भी छाता लेने का कोई अधिकार नहीं। तब ये गौवें से सुन रही है डिस्कशन क्या चल रहा है मैया और 2 बालकों के बीच में, और ये पता भी चला उनको कि अभी हमारे जो स्वामी है कृष्ण बलराम ये छाता और जूता स्वीकार करने वाले नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये डिस्कशन चल ही रहा था, ये चारों दिशा में गए क्योंकि उनको पता नहीं था उस समय भगवान किस दिशा में जाएंगे, पहले दिन कहाँ से जाएंगे, पूर्व से जाएंगे कि पश्चिम में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, उनको पता नहीं है। तो चारों दिशा में सारी गौवें जो है ना डिवाइड हो गई, कृष्ण के पिताजी की गाय तो थी और ग्वाल बालों की गैया भी थी उसमें ना बड़ी बड़ी, सभी लोग लाखों गैया थी, चारों दिशा में गई प्लान करके और अपने जो है ना वो क्या कहते हैं हार्ड हूव्स, अपने सख्त जो पैर है ना उनके, उससे कूट कूट कर पत्थर कंकड़ कांटे सारे पत्थर को चूर चूर करके पाउडर बना दिया, पूरा एकदम टैल्कम पाउडर बना दिया। हाँ, और क्या किया देखो, वो तो ऐसे तो लेबर नहीं है, वो उनको लेबर करने पत्थर तोड़ने को नहीं भेजा था, वो तो प्रेम से गई थी कि अभी भगवान दूर जाएंगे, जूता नहीं स्वीकार करेंगे तो उनके कोमल मक्खन जैसे पैर जो है कोमल कोमल, उनको कितना कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हमको सहन नहीं होगा, इसलिए वो प्रेम से कूटने गए थे उसको। तो जब बालक कृष्ण भगवान के प्रेम से कूट रहे हैं तो उनके थन जो है वो इतने दूध से भरे हुए हैं, थन जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और वो जमीन से स्पर्श करने वाले थनों से बूंद बूंद टपक रही है, दूध की प्रेम की बूंद टपक रही है। तो क्या हुआ, टेलकम पाउडर जैसा रज बन गया, उस पर ठंडा ठंडा दूध का सिंचन भी हो गया, तो एकदम मक्खन ही तैयार हो गया। तो उनको पता चला कि ऐसे गीले गीले ठंडे ठंडे रज में चलेंगे तो चरण चिन्हों का निर्माण तो होगा ही ना, तो चरण चिन्हों का निर्माण होगा तो हम लोग ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम चरण चिन्हों पर चल के चलेंगे। सब लोगों ने वहीं मीटिंग किया और डिस्कशन किया कि सबसे आगे कृष्ण बलराम चलेंगे, उनको 2 चरणों की जोड़ी जो है ना वो चरण चिन्ह बनाते जाएंगे और हम सब लोग ग्वाल बाल और गैया सब मिलकर उनके चरण चिन्हों पर पावने रखेंगे। अब ये कैसे हुआ मुझे मत पूछना, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। चार चरण चिन्ह निकल रहे हैं, उसमें पीछे करोड़ों चरण चिन्ह जा रहे हैं, और कोई भी उनके चरणों पर अपने पाँव नहीं रख रहा है, ये कैसे मुमकिन है? गैया भी है, बछड़े भी है, बकरी भी है, भैंसे भी है, भैंसा भी है, सब प्रकार के जानवर थे। ऐसा नहीं कि खाली गैया थी, कृष्ण के पास बस भैंसे भी थी और बकरियाँ भी थी और खरगोश भी थे, सब लोग चलते थे घूमने के लिए, कृष्ण का साथ कौन नहीं लेगा। लेकिन ब्रज भूमि के छाती पर चरणों के अलंकार निर्माण किए गए, इसलिए कहते हैं कि ब्रज भूमि जो है ना कृष्ण के अवतार के समय इतनी प्रफुल्लित क्यों थी, रात के समय फूल क्यों खिले, कमल क्यों खिले, इतने सारे सुगंधित फूल क्यों खिले रात को, क्योंकि पृथ्वी माता आनंदित हो गई थी कि अभी मेरे पति देव के चरण चिन्ह मेरे छाती पर अलंकार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ये है रज के चरण चिन्ह। चरण चिन्ह बनते कहां पर हैं? पानी पर नहीं बनते, जमीन पर बनते हैं, रज में बनते हैं। और कृष्ण कवि कर्णापुर, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उन्होंने भी इस चरणों का और रज का महा महिमा बताया है। क्योंकि और भी समय पर मैया कृष्ण बलराम को जूता पहनने के लिए प्रश्न करती, जूता क्यों नहीं पहनते हो? तो वो क्या कहते हैं पता है आपको? ध्यान से सुनिए सब लोग, अभी इसके बाद में मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। तो थोड़ा जमुना जी का दर्शन कर लीजिए। ये हमारे महाराज जी 1986 में जमुना जी के किनारे पे यात्रा किया था, फर्स्ट एवर यात्रा, ये उसका फोटोग्राफ है, सब फोटोग्राफी मैंने ही किया है। ये जमुना जी का किनारा है, देखिए ये आगे जाकर केशी घाट पहुंचता है। इतना सुंदर जमुना जी का दर्शन है, दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। इसी जमुना जी के जल में राधानाथ महाराज जी के माता जी का हमने अस्थि विसर्जन किया था। और ये अभी आपको ये दृश्य नहीं मिलेगा, ये तो 1986 का दृश्य है, ये परिक्रमा मार्ग है और ये पूरा रज से बना हुआ था। असली ब्रज रज क्या है आपको यहाँ मिलेगी, एक भी कंकड़ नहीं मिलेगा, एकदम पाउडर के जैसा मुलायम ब्रज रज मिलेगा आपको। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, हा? ऐसी हमारी जमुना जी महारानी, देखिए ना सुंदर दर्शन है, ये कैशी घाट का दर्शन है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कृष्ण भगवान को मैया कहती है बेटा जूता पहन लो, तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मुझे पूर्णमासी ने कहा है कि ये वृंदावन का जो जमीन है ना, ये वृंदा देवी का हृदय है, तो मैं वृंदा देवी के हृदय पर कैसे अपना पैर रख सकता हूँ जूता पहन के? ये तो ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो ये मैया गई पूर्णमासी के पास कि आपने ऐसे कहा था क्या उसको? तो उन्होंने कहा कि मैंने भी उसको ऐसे ही बता दिया था, मैं तो इसलिए उसको कहती थी जूता मत पहनो क्योंकि मैं जानती हूँ कि जहाँ जहाँ कृष्ण चरण रखते हैं ना, वहीं ही ब्रज भूमि को चैतन्य प्राप्त होता है। आपको अगर यकीन नहीं था, आपको जाके देखो जब कृष्ण चलते हैं ना उसके पीछे पीछे देखो वहाँ चरण चिन्ह में क्या हो रहा है। तो एक दिन वो अगले दिन तुरंत जाती है पीछे पीछे कृष्ण के, कृष्ण आगे चले जाते हैं और पीछे पीछे चरण चिन्ह कहाँ कहाँ है वहाँ देख के जाए तो क्या लिखती है कि जहाँ चरण पड़े हैं ना वहाँ पर चैतन्य दिखाई पड़ रहा है, लाल रंग की बॉर्डर है, सुनहरा रंग प्राप्त हो गया है और वहाँ पर जीव की मतलब जीवन की उत्पत्ति हो रही है। और जहाँ जहाँ देखा वहाँ पर चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ ब्रज को ब्रज भूमि को जीवन प्राप्त हुए वो दर्शन करती है। तब वो यकीन होती है, वापस आती है, बोलती है पूर्णमासी से कि मैं अभी विश्वास हो गया मुझे कि कृष्ण को जूता पहनकर चलाएंगे तो ब्रज भूमि का उद्धार कैसे होगा, ब्रज भूमि का जीवन प्राप्ति कैसे होगी, तो मैं समझ गई अभी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये पत्थर पर चढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ता है, तो इतना सख्त पहाड़ उसको पैर को कष्ट देता होगा ना, तो उसका क्या, जमीन पर समझ गई मैं। तो पूर्णमासी कहती है, ये कवि कर्णामृत लिखते हैं, हाँ कृष्ण कर्णामृत में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं वो, पूर्णमासी कहती है कि जहां जहां पत्थर होते ना, एक तो इनका पैर रखते ही वो मक्खन जैसा मुलायम हो जाते हैं और इनके पैर की इतनी महिमा है जहां रखते वहां पर मुलायमता आ जाती है। तो दोनों समझ लो आप, या तो पत्थर अपने आप मुलायम हो रहे हैं या तो इनके पैर के स्पर्श से मुलायम हो जाते हैं। तो वो भी देखने के लिए मैया आतुर हो गई। तो कृष्ण का ना मुंडन का विधि हुआ, और कृष्ण का मुंडन का विधि उधर हुआ, कहाँ पर, केदारनाथ में। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ब्रज में प्रकट हो गए हैं, इसका मतलब इस लीला के पहले ही, कृष्ण के मुंडन होने के पहले ही बद्री केदार आदि बद्री केदार प्रकट हो गए थे ब्रज में। तो केदार में कृष्ण का मुंडन विधि था, तो सब ये समारोह ब्रजवासी सब लोग गए वहां पर, तो बालक जो थे कृष्ण बलराम वो भाग भाग के ऊपर गए और पहाड़ पर चढ़ के सबसे पहले ऊपर पहुंच गए, और फिर ये बुजुर्ग गोपियां बाद में पहुंची। तो क्या हुआ, मैया ने उनके चरणों को घूर से देखा तो देखा कि हर एक चरण चिन्ह जो है वो पत्थर के अंदर ऐसा घुसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां पैर रखा वहां वहां पत्थर पिघल गया और चरण चिन्ह बन गया। जब पैर उतार निकाल दिया वहां से, वापस सख्त हो गया, चरण चिन्हों को छोड़ दिया वहां पर। तो जब ये देखा तो मैया को विश्वास हो गया कि अभी बालक को जूता पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ये भगवान के चरण के रज की महिमा है। क्या क्या बताएं, कहां तक बताएं आपको? अभी मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। आप लोग मुझे बहुत देर से सुन रहे हैं, आप मुझे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको प्रश्न है तो, और मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा मेरी क्षमता के अनुसार। तो मदन मंजरी अगर है तो वो उसको कंडक्ट भी कर सकती है। यस मधुलीला माता जी,
बिना संतानी माता जी।
हाँ, उनका नाम मधुलीला माता जी।
मधुलीला माता जी,
शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही है, एक मिनट मैं करता हूँ उसको। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। What is happening? Yes. Is anybody able to unmute themselves or not? Amrut Rupini, you can try to unmute yourself. Unable. अभी कैसे किया जाए इसको?
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हाँ, यस, बोलिए माता जी, प्लीज स्पीक। फिर अनम्यूट हो गए क्या मालूम। हाँ बोलिए।
आई कैन नॉट फाइंड द क्वेश्चन बुक में, मैंने लिखा है, एज सून एज आई फाइंड इट आई विल।
ओके, तब तक कोई और पूछ सकता है तो पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हरे कृष्णा, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज क्वेश्चंस। ठीक है, मदन मंजरी हैज क्वेश्चंस? आपके अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं उसमें चैट में, तो वहां पर देख सकता हूं मैं।
पर्सनल चैट, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट क्या हमें रज रज के साथ यमुना जी का जल भी मिल सकता है क्या?
बिल्कुल ले सकते हैं, आपको केवल गोवर्धन के पास के रज लेने का अधिकार नहीं बस, क्योंकि उसमें कंकड़ हो सकते हैं कभी कभी, तो वो गिरिराज शिला कंकड़ के रूप में आएगी तो उसको लाना ब्रज के बाहर अपराध है। तो गोवर्धन की रज को ले छोड़कर आप बरसाना, नंदगांव, काम्यवन, जहां जहां घूमेंगे, कोशी, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, जहाँ की भी रज आप ले सकते हो, साथ में जमुना जी का जल भी भर भर के लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल है, यमुना जी का जल तो पहुंचते पहुंचते सूख जाएगा पूरा और बह जाएगा। तो इसलिए जो पहुंचा सकते हैं वो आप हमको पहुंचाने का मौका मिला है। जल के बारे में विचार किया मैंने, लेकिन वो डिफिकल्ट है। मैंने कभी भी डब्बी में पाक किया तो डब्बी से हिल हिल के वो लीक हो जाता है, पूरा बचता ही नहीं है। ये पहले भी कोशिश किया था हमने तो छोड़ दिया हमने उसको फिर। यस, मीना समतानी माता जी बोलिए। मधुलीला
प्रभु जी, दिस अबाउट गोवर्धन शिला, आई हैव हर्ड दैट एनीबॉडी हु गोस टू वृंदावन एंड मेक्स अ हाउस फ्रॉम द गोवर्धन शिला, सो दैट मींस यू हैव टू टेक बर्थ अगेन इन इन गोवर्धन, और यू नो आई वांटेड टू नो गोवर्धन शिला महिमा। आई हैव ऑलवेज सीन हाउसेस ओवर देयर, यू नो, स्मॉल स्मॉल स्टोन।
माता जी, ये मैं लास्ट टाइम मैंने पूरा समझाया था आपको, ये लास्ट कथा में पूरा समझाया था। गोवर्धन की शिला वहाँ पर घर बनाने से प्राप्त नहीं होती है। हाँ, वहाँ पर घर बनाने का जो काम है ना, वो खाली तमन्ना है हमारे कि हमारा अगला जन्म ब्रज में हो, ब्रजवास प्राप्त हो, ये उसका अलग अर्थ है, उसका गोवर्धन शिला से कोई कनेक्शन नहीं है। और गोवर्धन चिला ब्रज के बाहर हम तभी ले जा सकते हैं जब हमको गुरु की आज्ञा हो, जब कोई ब्रजवासी हमको स्वयं स्फूर्त, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे मुझे दो करके, वो दिल से आपको खुद की खुशी से निकाल के देगा, तब आप ब्रज गोवर्धन की शिला पूजा करने के लिए प्राप्त कर सकते हो। बिना गुरु की आज्ञा और बिना ब्रजवासी के हाथ से प्रेम से प्राप्त होने के बजाय हम एक कंकड़ भी वहाँ से अपने घर ले नहीं सकते, ला नहीं सकते हैं, और लाएंगे तो हमारे भक्ति में बहुत उतल पुतल हो जाएगी, बहुत कष्ट प्राप्त होगा।
अगर आपको मोक्ष मिलना है तो वो मोक्ष भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव टू कम बैक अगेन जस्ट बिकॉज़ यू मेड अ हाउस इन गोवर्धन।
ब्रज में कृष्ण भक्ति में रहना यही मोक्ष है, और ब्रज में अगर जन्म मिल भी जाता है तो वहां से आपको जाना भी वैकुंठ में ही है, गोलोक में जाना है, तो इट्स नॉट डिफरेंट। तो ये सब ना एक खुद का कैलकुलेशन है कि हमको वहाँ घर बनाएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा रहने के लिए, फिर क्या होगा, मोक्ष मिलना होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अरे वहाँ पर जाकर जन्म प्राप्त होना यही मोक्ष की दूसरी व्याख्या है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोक्ष, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो वील प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर। प्रभु जी, आई हैव जल फ्रॉम यमुनोत्री, इज इट सेम? मैंने आपको बता दिया ना, प्रश्न यह है कि यमुनोत्री का जल और यमुना का वृंदावन का जल, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि यमुनोत्री में केवल पाप नष्ट होते हैं, और जब यमुना जी वृंदावन में प्रवेश करती है तो पाप पुण्य और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, पाप पुण्य नष्ट होते हैं और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, तो इज इट नॉट सेम? दैट इज आंसर। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप यात्रा में हो, गुप्त रूप में बैठने के लिए नहीं है हम लोग यहाँ पर। यात्रा में सब लोग भक्त लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को दर्शन देते हैं, उनका संग लेते हैं। तो मैंने सुबह भी आपको विनती किया था, मेरी आपको नम्र विनती है कि ऐसे छुप कर बैठने से यात्रा नहीं होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं आगे अभी बढ़ता हूँ, और आगे हम सबसे पहले जाएंगे प्रभुपाद जी के मंदिर में, जिसको हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसकी महिमा को जाने बिना हम ब्रज में जाना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें आज कुछ वृंदावन के बारे में पता है, अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कुछ बता पा रहा हूँ, इसका पूरा रहस्य जो है वो श्रील प्रभुपाद जी का ये मंदिर है, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है वो है। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में आए थे एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति के रूप में आए थे, बड़े महान संत थे वो, लेकिन कोई उनकी ख्याति कीर्ति कुछ नहीं थी, कोई शिष्य समुदाय नहीं था, कोई संस्था नहीं थी उनकी, सब जगह पर उन्होंने जो प्रयास किया था वो फेल हो चुके थे, उनकी फार्मेसी फेल हो चुकी थी, उनका लीग ऑफ डिवोटीज फेल हो चुका था, का क्या नाम था उसका, रांची ना, झांसी से वो निकल चुके थे, यानी कि एक तरह से अयशस्वी थे, और ऐसे भाव में वो वृंदावन में आए थे, और एकाग्र भाव से उन्होंने वहाँ पर कुछ समय निवास किया था, और भगवत गीता और भागवतम प्रथम खंड का अनुवाद किया था, और वहाँ से अमेरिका गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रज को अपने हृदय में लेकर वो अमेरिका गए थे, अमेरिका की सफर करने के लिए नहीं गए थे, उनको कृष्ण प्रेम देने के लिए गए थे। उसके बाद में उन्होंने स्वयं के प्रयास से, खुद के प्रयास से उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। तीन मंदिर खुद के प्रयास में बनाया, एक जुहू का मुंबई का मंदिर, एक वृंदावन का रमन रेती का मंदिर, और एक मायापुर का मंदिर। ये तीनों मंदिर प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने अपने खुद के प्रयास से, खुद के फंड रेजिंग से, खुद के कॉन्स्टेंट फॉलोअप से बनाया है। इतना सुंदर मंदिर जब खड़ा किया, उसके पहले मैंने बताया वहाँ पर जंगल था, शेर आया करते थे वहाँ पर, पूरा वृंदावन तो विद्यापीठ चौराहे तक ही सीमित था, लेकिन प्रभुपाद जी के मंदिर खुलने के पश्चात विदेशी लोग सबसे पहले वृंदावन में आने लगे। उस समय तक तो लोई बाजार एक लोकल बाजार था, कोई जानता नहीं था, प्रभुपाद जी के मंदिर बनाने के बाद में लोई बाजार वर्ल्ड मैप में आ गया, वर्ल्ड मैप में। लोई बाजार में आज एक एक दुकान जो है ना, वो दिन में करोड़ों का व्यवहार करता है, दिन में अनेक करोड़ों का व्यवसाय एक दिन में करता है, सब लोगों ने, दुकानदारों ने अपने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बांध ली है। उन दुकानों में जाकर प्रभुपाद जी भिक्षा करते थे, दामोदर में रहते थे तो लई बाजार में दुकान में जाकर भिक्षा करते थे कभी कभी। वो लोग बुजुर्ग दुकानदार भी याद करते हैं कि हमारे दुकान में प्रभुपाद जी रात को सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने आते थे। ऐसा नम्र जीवन जीने के पश्चात अमेरिका गए और इतना भव्य मंदिर बना दिया। जिन जिन से भिक्षा लिया उन सबको भर भर के उन्होंने लौटा दिया, भर भर के उनका उद्धार किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने केवल दिव्य स्तर पे उनका उद्धार नहीं किया, आध्यात्मिक उद्धार केवल नहीं किया लेकिन भौतिक उद्धार भी किया, धन से भी उनका उद्धार कर दिया। तो ये सुंदर मंदिर है प्रभुपाद जी का, ये उनकी समाधि है। जो सफेद रंग का पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है उनकी समाधि है, आगे जो दिखाई पड़ रहा है वो कृष्ण बलराम जी का मंदिर है। ये देखिए दोबारा आपको दिखाई पड़ेगा, ये ऊपर से दृश्य है शिखर का और ये समाधि का दृश्य है और ये अभी आपको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है भगवान का दर्शन, दूसरा है प्रभुपाद जी का कमरा जहां पर वो निवास करते थे और तीसरा है प्रभुपाद जी की समाधि। तो ये अभी गौर निताय का दर्शन हो रहा है, देखिए आप बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है गौर निताय का। श्री श्री गौर निताय यहाँ पर विराजमान है, बाजू में प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज का विग्रह भी विराजमान है। ये श्री कृष्ण बलराम जी यहाँ पर विराजमान है, देखिए बहुत सुंदर दर्शन है। श्री कृष्ण बलराम यहाँ गौचारण वेश में खड़े, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय हो जय हो जय हो। इनकी ये विशेषता है कि एक ब्रजवासी, खास ब्रजवासी प्रभुपाद का मित्र, प्रभुपाद जी को मिलने के लिए एक बार मंदिर आया था और बुजुर्ग था वो भी प्रभुपाद जी की उम्र का, तो प्रभुपाद जी को समय दिया था, प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे तो बहुत देर तक ना वो उस समय पर मिलने नहीं आया और बहुत लेट आया। तो प्रभुपाद जी सोचते रहे कि अरे लेट आया, क्यों नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आए। तो बहुत देर के बाद में वो ब्रजवासी व्यक्ति थे वो प्रभुपाद जी के निवास में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैंने पूरे ब्रज में ढूंढा लेकिन मुझे कृष्ण बलराम का कहीं दर्शन नहीं हुआ, आपके मंदिर में जब आया तो यहाँ दिखाई पड़े वो कृष्ण बलराम, आपने यहाँ पर उनको बांध के रखा है प्रेम से, इसलिए मैं उनको बहुत देर तक निहारता रहा इसलिए मैं आपके कमरे में समय पर नहीं आया, ऐसे उन्होंने बताया। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद हुआ कि एक अगर ब्रजवासी, सच्चा ब्रजवासी अगर कृष्ण बलराम को यहाँ पर उनकी उपस्थिति का, सान्निध्य का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में कृष्ण बलराम जी यहाँ विराजमान है, यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर रहते हैं। हाँ वो तो उनको श्रद्धा थी पहले से लेकिन एक ब्रजवासी के मुख से जब मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम कहीं भी नहीं मिले, आपके मंदिर में बंधे हुए मिले, प्रेम से खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो उनको बड़ा आनंद हो गया। और ये हमारे श्याम सुंदर जी हैं, देखो इनका अंतर है इनके दर्शन में, देखिए ये ग्वाल बाल के एकदम मिश्किल मुख कमल में दर्शन दे रहे हैं। हाँ बच्चे कैसे होते हैं ना, बहुत शरारती होते हैं, वैसे बहुत सुंदर भाव है इनका, देखिए आप। और ये आगे देखेंगे, ये देखिए कृष्ण बलराम का ये मुख कमल देखिए आप। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी ने कहा है कि अभी देखिए पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने कहीं भी कृष्ण बलराम का मंदिर नहीं बनाया, सबसे पहले कृष्ण बलराम का मंदिर जो है वो रमन रीति में बनाया। उसका कारण क्या था, क्योंकि रमन रीति में श्री कृष्ण और बलराम जी बालक रूप में बहुत ज़्यादा विहार करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लीला करते हैं, आनंद में लीला करते हैं, बहुत किल्लोड़ करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बच्चे लोग जब खेलते क्या होता है, केवल शोर मचता है ना, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहे, सब लोग चिल्लाते रहते हैं। कृष्ण बलराम भक्त भी ऐसे ही करते हैं और वो रमन रीति में खास हमारा कृष्ण बलराम का मंदिर है, उसी में खास हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिस है। कहते हैं कि वहाँ पर कृष्ण बलराम है ना, जो व्यक्ति वहाँ पर अपने शरीर को त्यागता है वहाँ पर उस भूमि में उस क्षेत्र में, कृष्ण बलराम आकर उनको गले लगाते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं, ऐसी महिमा है उस जगह की। इसलिए प्रभुपाद जी ने रमन रीति में जगह ली और वहाँ पर कृष्ण बलराम का मंदिर बनाया। राधा श्याम सुंदर भी बनाया कृष्ण राधा रानी का, लेकिन सेंट्रल प्रथम अधिकार फर्स्ट इन कमांड कृष्ण बलराम जी है वहाँ पर, इसलिए वो बीच में है। हमारे इस्कॉन मंदिर में तीन विग्रह होते हैं और जो प्रधान विग्रह है वो बीच में होते हैं, ऐसे गिरधारी मंदिर में राधा गिरधारी बीच में है, बाजू में जगन्नाथ जी और इधर गौर निताई जी हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलराम बीच में है और उसके बाजू में राधा श्याम सुंदर जी, इधर गौर निताई है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, फर्स्ट इन कमांड कृष्ण बलराम जी, उसके बाद में राधा श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी अभी माधुर्य भाव में है ना, वो तो साख्य भाव में है कृष्ण बलराम जी, ये तो माधुर्य भाव में है राधा श्याम सुंदर जी। देखिए दर्शन कीजिए बड़े प्रेम से, बड़ा अद्भुत दर्शन है। इसी महीने का दर्शन है, ये नवंबर महीने का कार्तिक का दर्शन है। राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है, देखिए आप इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। मेरे को लगता है विश्व में इसलिए नहीं कि मैं इस कौन में हूँ, लेकिन एक ब्रज छोड़ेंगे ना, ब्रज में एक विशेष बात है, ये तो निश्चित है, लेकिन एक ब्रज छोड़ेंगे ना तो विग्रहों का श्रृंगार इतने ढंग से, इतने प्रेम से, इतनी पद्धति से और कहीं करते नहीं है इस कौन के अलावा। विदेशों में देखेंगे आप इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनका श्रृंगार देख के लोग हैरान हो जाते हैं, इतना सुंदर विग्रहों को सजाते हैं। विग्रह आते हैं तब एक दिखते हैं, और विग्रहों को आने के पश्चात सेवा करने के बाद उनकी तेज आता है, उसके अंदर से तेज प्रकट होता है। हाँ, जितने साल सेवा करेंगे उतने तेजस्वी हो जाते हैं विग्रह। और इस्कॉन में इतने प्रेम से श्रृंगार करते हैं, इतने गर्मी के मौसम में इतने ठंडे ठंडे फूल लगाते हैं उनको। देखिए श्री कृष्ण और राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन देखिए। जय हो श्याम सुंदर जी महाराज। तो श्याम सुंदर जी के विषय में एक कथा जरूर बताना जरूरी है। तभी प्रभुपाद जी ने विग्रह बनाए और उनके प्रतिष्ठापना करने का समय आ रहा था, तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि जाओ सब लोग, है ना, कीर्तन मंडली मृदंग मृदंग लेके जाओ, और राधा श्याम सुंदर का मंदिर जो सेवा कुंज में है वहां पर जाकर बैठो और कीर्तन करो, और श्याम सुंदर जी को निमंत्रण दो कि हमारे मंदिर में आ जाओ। ऐसा नहीं कि इस मंदिर को छोड़ के आ जाओ, लेकिन हमारे मंदिर में भी आ जाओ। तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने जाकर वहां पर बहुत खूब कीर्तन किया था राधा श्याम सुंदर के मंदिर में, और ये हमें विश्वास है कि राधा श्याम सुंदर जी वहां पर भी विराजमान है, लेकिन रमन रेती भी आकर विराजमान है। और आप देखेंगे मंदिर में जाएंगे ना, कृष्ण बलराम के पास भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन सबसे अधिक भीड़ जो है ना श्याम सुंदर के पास में होती है। अरे वो मंगला समाप्त होती है, इसके बाद में गुरु पूजा समाप्त होती है, फिर भी लोग वहां पर टिके रहते हैं, हिलते ही नहीं वहां से, जगह ही देते नहीं किसी को देखने के लिए। इतना अप्रतिम सौंदर्य है कृष्ण बलराम का और राधा श्याम सुंदर का कि नजर उनसे हटती नहीं है। क्या देखूं और क्या नहीं देखूं, कौन से हिस्से को नहीं देखूं, कौन से हिस्से को देखूं, मुख कमल को देखूं कि हस्त कमल को देखूं, कि राधा रानी के बेनु को देखूं, कि कृष्ण की मुरली को देखूं, कि कृष्ण के मुड़े हुए चरण को देखूं, कि उनके हाथ में जो रस्सी पकड़ी उन्हें उनको देखूं, कि कमर में जो रस्सी बांध के रखी है, जो बुगेल बांध के रखा है उसको देखूं, कि माला पहनी उसको देखूं, एक एक अंग जो है उनका इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को इतना सजाते क्यों हैं, कि उनके श्रृंगार में से उनका कोई भी एक अंग आपको पसंद आया, मुरली पकड़ा हुआ हाथ, कर कमल पसंद आया और उसकी याद आई, तो आपका जीवन धन्य।